नमस्कार दर्शकों, ऊर्जा में बात चल रही है विपश्यना के पहले चरण शील के बारे में। दर्शकों, जब भी हम धर्म की बात करते हैं तो अधिकतर हमें यही बताया जाता है कि हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन ये तो हमें कोई नहीं बताता कि हमें क्या करना चाहिए। नेगेटिव पॉइंट्स को छोड़कर कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी तो होंगे ना। आइए यही प्रश्न पूछते हैं हमारे गुरुजी श्री गोयंका जी से। गुरुजी
सुखी हो बेटी।
प्रणाम माता जी। गुरुजी, आपने जो शील पालन वाली बात कही उसमें अधिकतर यही बताया जाता है कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, तो इसमें नेगेटिव बातें ज्यादा होती है, तो क्या इसमें कोई पॉजिटिव बात नहीं है?
बहुत अच्छा मुद्दा उठाया तूने बेटी। आरंभ तो इसी से होगा, ये दुष्कर्म है मत करो, ये दुष्कर्म है मत करो। दुष्कर्मों से छुटकारा पाते पाते फिर सत्कर्म करने लगेगा। तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक तरफ नेगेटिव है, एक तरफ पॉजिटिव है, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। पुरानी भाषा में ये मत करो, ये मत करो, इसे वारितशील कहा, माने उससे विरत रहो, विरमण रहो, उसमें मत लगो, और जब उसमें पक जाए, जैसे कहा हिंसा मत करो, हत्या मत करो, बचता है, अपने आप को रोकता है, नहीं करता है। लेकिन फिर उस महापुरुष बुद्ध ने ऐसी विद्या दी कि अंतर्मुखी होकर के गहराइयों तक जाते 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 जिस कारण से हत्या करता है, क्रोध जगता है तो हत्या करता है, द्वेष जगता है, दुर्भावना जगती है, उसी को जड़ों से निकाल दिया तो चित्त निर्मल होने लगा, तो अब उसमें मैत्री जागने लगी, करुणा जागने लगी, सद्भावना जागने लगी। जहां किसी को देखा, पहले ये अवस्था थी, जहां किसी को देखा कि उसने कोई अनचाही बात कह दी, अनचाहा काम कर दिया, तो उससे ये मारे मारो मारो, अब उसकी जगह प्यार जागता है। अरे जैसे मुझको अपने प्राण प्यारे हैं, इसको भी तो अपने प्राण प्यारे हैं, ये सुखी रहे, इसे शांति मिले, इसे सुख मिले, ये भाव जागते हैं। तो ये पॉजिटिव, पहले नेगेटिव, मत मारो मत मारो, हत्या मत करो, अब प्यार जागता है, प्यारी प्यार जागता है, मैत्री जागती है, तो ये पॉजिटिव हो गया। दोनों जुड़ करके धर्म की परिपक्वता होती है।
जी गुरुजी, गुरुजी ये प्राण लेने वाली बात तो समझ में आई, लेकिन चोरी के मामले में चारित शील कैसा होगा?
वही है बेटी, जैसे हत्या नहीं करने को वारित कहा और उसके लिए प्यार जगाने को चारित कहा, वो प्यार वो करुणा हमारे चरित्र में आ गई। ऐसे ही चोरी करने को वारित, चोरी मत करो, चोरी मत करो, अब जबरदस्ती अपने मन को दबा के चोरी नहीं करता है, अच्छी बात है, किसी की हानि नहीं करता, लेकिन जैसे अंतर्मुखी होकर गहराइयों में जाता है, विपश्यना करता है, भीतर तक देखते देखते, अरे ये जो लोभ जागता है, इसलिए जो वस्तु मेरी नहीं है उसको मैं चुराना चाहता हूं, अब ये लोभ जड़ों से निकलना शुरू हो गया, तब तो चुराने की बात कहां से आएगी। पहले तो ये था कि ये वस्तु मेरे पास नहीं है इसलिए चुरा लूं, अब ये होगा ये वस्तु इसके पास नहीं है, मेरे पास है, अरे इसको कैसे दे दूं, इसका मन कितना प्रसन्न होगा। तो चोरी करना नेगेटिविटी का जो अंग था, वो अब दान देना ये पॉजिटिविटी का अंग हो गया। जब कोई झूठ बोलता है तो ठगता है किसी को झूठ बोल करके, ऐसे ही कड़वी बात बोलता है तो दुखी करता है किसी को, हानिकारक वाणी। अब पहले तो उससे वारित होगा, छुटकारा पाएगा। अब जैसे जैसे मन के खोट निकलते चले जाएंगे विपश्यना करते करते करते, तो अब प्यार जागेगा, हर किसी से मीठी बात बोलना चाहेगा, प्यार की बात बोलना चाहेगा। ऐसी कोई बात नहीं बोलेगा जिससे किसी का मन दुखे। अब तो मीठे बोल ऐसे बोलेगा कि जिससे अपना मन भी पुलकित हो, औरों का मन भी पुलकित हो। खोटे कड़वे बोल से दुखी हों ये सब लोग, ये नियम है। कड़वे बात बोलेंगे तो दुखी होंगे ही, और बोले मीठे बोल जब तन मन पुलकित हो। ऐसा पुलकित होता है, खुद भी होता है, बोलने वाला भी और सुनने वाला भी। तो ये पॉजिटिव हुआ, ये चारित हो गया।
जी गुरुजी, इसी विषय पर आपसे बात जारी रहेगी। जाइएगा नहीं, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुरुजी, आपने कहा कि कड़वी बात नहीं करनी चाहिए, पर इससे पहले आपने ये भी कहा कि जो लोग मीठी जुबान से नहीं मानते उनके लिए कठोर शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। तो फिर गुरुजी, ऐसे में शील का पालन कैसे हो सकता है?
कठोर शब्द का प्रयोग हो, कड़वे का नहीं। शुरू में तो इतना ही होगा कि हम कड़वी बातों से, कड़वे बोल से छुटकारा पाएंगे। उतना हो गया तो वारितशील हो गया। अब मीठे बोल बोलेंगे, बड़ी अच्छी बात। पर कभी ऐसी परिस्थिति आए कि कोई व्यक्ति मीठे बोल समझे नहीं, नरमाई के बोल समझे नहीं, तो कठोर बोल भी बोलने पड़े। लेकिन भीतर ऐसी अवस्था होनी चाहिए, साधना करते 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 भीतर प्यार का आधार होना चाहिए, मैत्री का आधार होना चाहिए, करुणा का आधार होना चाहिए। क्योंकि वो मृदु भाषा नहीं समझता, इसलिए कठोर का प्रयोग करते हैं। भीतर कटुता नहीं है, करुणा है। अरे दुखियारा है, इसको दुख के बाहर निकालना है। ये कठोर भाषा समझ के दुख के बाहर निकलेगा तो इसके भले के लिए कठोर भाषा बोलेंगे। एक घटना भगवान बुद्ध के जीवन काल की। उन्होंने अपने किसी शिष्य के प्रति, जिसको होश नहीं था, बहुत बार समझाया, धर्म समझता नहीं था, तो उसके लिए कुछ कठोर शब्दों का प्रयोग किया। बात फैली इधर उधर, तो मगध का राजकुमार अभय कुमार वो आया भगवान के पास। भगवान, आप कभी कभी कठोर वाणी भी बोल देते हैं। तो भगवान ने कहा, आवश्यक हो तो बोल देते हैं, हमेशा तो नहीं, पर जहां आवश्यक हो, क्योंकि इसी भाषा में वो समझेगा, तो इसलिए कठोर वाणी बोलनी पड़ती है। संयोग से राजकुमार की गोद में उसका बालक, उसका शिशु, उसका पुत्र बहुत छोटा, जो अभी अपने पीठ के बल पर ही लेट सकता, बैठ भी नहीं सकता, वो लेटा हुआ है। और किसी की गलती से या उस बच्चे की गलती से कोई कंकर उसके मुंह में आ गया। भगवान कहते, देख इस मुंह में कंकर है ना, अब इसे निकालना है, नहीं तो गले में फंस के न जाने क्या कर देगा, इसकी जान को भी खतरा हो जाएगा। तो कैसे निकालोगे? अंगुली डाल करके बलपूर्वक उसको निकालोगे और बच्चे को अच्छा नहीं लगेगा, वो रोएगा, रोता रहे, उसका भला इस बात में है कि हमको कठोरता के साथ वो कंकर निकालना है। इसी तरह किसी के साथ कठोरता की वाणी बोल करके सुधारना हो तो बोलना पड़ेगा। उस बच्चे के प्रति कितनी करुणा है, उसकी जान बचानी है, कितनी मैत्री है। ऐसे ही जो व्यक्ति होश में नहीं है और उसको कठोर भाषा ही समझ में आती है, तो भीतर से बड़ी मैत्री है, इसका सुधार कैसे होगा? इसलिए कठोर शब्द बोले, कटुता बिल्कुल ना हो।
जी गुरुजी, गुरुजी ये जो नशे पते की बात है, इसमें पॉजिटिव क्या है?
बहुत है पॉजिटिविटी। आखिर क्या करता है नशा पता? बेहोश करता है हमें, हमारा होश ठिकाने नहीं रहता। हम यही नहीं समझते कि हम कर क्या रहे हैं, सजग नहीं है। जो नहीं करना चाहिए वो कर जाते हैं, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल जाते हैं। तो पहली बात तो वारिद की कि इस तरह के मादक पदार्थों का सेवन बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि इससे मैं अपना होश खो बैठता हूं। अब आगे बढ़ता है तो भीतर से सजगता आनी शुरू होती है। अब तो हर पल सजग है, हर क्षण सजग है, जो बोलेगा, जो करेगा, यहां तक कि जो चिंतन भी मन में आएगा तो खूब सजग है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मन में कोई विकार जाग जाए और वाणी से कोई अनचाही बात बोली जाए, कि शरीर से कोई ऐसा काम किया जाए, तो अब बिल्कुल भीतर से सजग रहने लगा तो समता आई, मन के अंदर इक्वानिमिटी आई, संतुलन आया। और जैसे ही मन में समता आती है, संतुलन आता है, और इस साधना से आता है, यही लक्ष्य है इस साधना का। और जैसे आने लगता है भीतर, इतनी शांति, इतना सुख। अब जो भीतर शांति और सुख आई वो बाहर फैलने लगी, सारे वातावरण में शांति की तरंगे, सुख की तरंगे। तो अब स्वयं भी सुख शांति का जीवन जीता है क्योंकि सजग है, और सारे वातावरण में सुख शांति की तरंगे, सुख शांति की तरंगे। जो भी उस वातावरण के संपर्क में आएगा उसी को बड़ी शांति मिलेगी, बड़ा सुख मिलेगा। तो ये चारित होने लगा, धर्म ऐसा जीवन में उतरने लगा कि भीतर से हमारे लिए भी कल्याणकारी और बाहर से ओलों के लिए भी कल्याणकारी। तो ये शील धर्म की जो विशेषता है वो वारित और चारित दोनों के जुड़ जाने से, एक सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों प्रमुख होने चाहिए, परिपूर्ण होने चाहिए।
जी गुरुजी धन्यवाद। अब तो नेगेटिव और पॉजिटिव सारी बातें एकदम स्पष्ट समझ में आ गई। गुरुजी हमारे इस शो का अगला हिस्सा दर्शकों के प्रश्नों पर आधारित है, तो दर्शकों जाइएगा मत, लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। गुरुजी पहला सवाल आया है गुजरात से दीपाली मेहता का, वो पूछती हैं कि गलत काम करने वालों को तो हम देखते हैं कि वो बड़े चैन से रहते हैं, उन्हें समाज में पद और प्रतिष्ठा भी मिलती है और इन्हें किसी चीज का अभाव भी नहीं होता, जबकि सच्चे लोग हमेशा परेशान रहते हैं। तो ऐसे में अच्छे बनने की प्रेरणा जगे तो कैसी जगे?
पहली बात तो ये समझनी चाहिए बेटी कि जिसे कोई दूसरा समझता है कि इसके पास कोई अभाव नहीं है, ऐश्वर्य है, संपदा है, सब कुछ है, सच्चाई नहीं है, बहुत अभाव है। हम एक अपने जीवन की एक घटना याद आती है, बर्मा में रहते हुए मांडली शहर से कोई 40-50 मील दूर किसी एक वन प्रदेश में एक भारतीय योगी तपस्या करे और उसकी बड़ी प्रसिद्धि, लोग उसको नमन करने जाएं, लोगों की बड़ी श्रद्धा उसके प्रति। तो एक बार मैं भी चला गया, देखा उसे, तो गया तो इस मारे कि जंगल में क्या खाता है, क्या रहता है, पता लगा कि न तो जंगल में कोई फल है और न कोई कंदमूल है, कहीं से भोजन आता है कर लेता है। लेकिन फिर भी उसे मिल करके मन प्रसन्न हुआ। कुछ दिनों के बाद उसने पेपर में एक क्वेश्चन डाला सबके लिए कि एक आदमी धरती पर चटाई बिछाकर सोता है और दूसरा आदमी पलंग पर गलीचे लगा के सोता है, इन दोनों में से कौन अधिक सुखी है? अब लोगों के उत्तर आने लगे, यह भी कोई पूछने की बात है, जो गलीचे पर सोता है वो ज्यादा सुखी है। तो एक विद्यार्थी, किशोर विद्यार्थी, वो उत्तर लिखता है, 3-4 पन्ने का उत्तर लिखता है। वो कहता है दोनों के दोनों दुखी और दोनों के दोनों सुखी। वो गलीचे पर सोने वाला आदमी रात भर तड़पता है, पड़ोसी के पास तो मुझसे अच्छा गलीचा है और मेरे पास, अरे ये गलीचा, ये भी कोई गलीचा है, उसके पास देखो इतना बढ़िया, नींद नहीं आती रात भर। इसी तरह से वो चटाई पर सोने वाला, ये देखो पैसे वाले कितने आराम से सहते, मुझको इस चटाई पर सोने को मिला, दोनों दुखी। और होश आ जाए तो दोनों सुखी हो सकते हैं। वो चटाई पर सोने वाला भी बड़ा प्रसन्न है, अरे क्या हुआ, चटाई पर सोए हैं तो भी संतोष है हमें। और उस पर ही सोने वाला, अरे औरों के पास तो देखो, मखमल की बात करते हो, लोगों के पास चटाई भी नहीं सोने को, नंगे धरती पर सोते हैं। तो हर अवस्था में समता बनी है तो दोनों के दोनों सुखी हैं, अपनी अवस्था से दोनों को संतोष है, दोनों सुखी हैं। और ये धर्म की बात जागती है मन में, क्वचित भूमो शय्या क्वचिदपि च पर्यंक शयनं। कभी धरती पर सोता नंगी धरती पर, कभी पलंग पर सोता है, क्वचित शाकाहारी क्वचिदपि च शल्योदन रुचि। कभी रूखे सूखे सागपात खाने को मिलते हैं और कभी बासमती चावल का बड़ा व्यंजन मिलता है, अच्छा भोजन मिलता है। क्वचित कंथाधारी क्वचित पिच दिव्यंबर धरा। कभी कभी फटे पुराने कपड़े पहनने को मिलते हैं और कभी तो ऐसे राशि दिव्य मिलते हैं पोशाक पहनने को। मनस्वी पुरुषार्थी गणयति दुखं न च सुखं। जो मनस्वी है पुरुषार्थी है वो दुख नहीं मानेगा सुख नहीं मानेगा, दोनों अवस्था में समता, जो अवस्था ही सामने उसी में समता। इसीलिए कहा गया गोधन गजधन बाजधन हो ये रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। संतोष धन के सामने कौन सा धन टिकेगा, उसका कोई मुकाबला नहीं। और धर्म यही सिखाता है, साधना करते 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 उस अवस्था पर पहुंचेगा जब हर अवस्था में मुस्कराता है, हर अवस्था में प्रसन्न रहता है, क्योंकि चित्त संता में रहता है, संतुष्ट रहता है।
धन्यवाद गुरुजी। तो दर्शकों जाइएगा नहीं, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुरुजी आपने कहा कि शील का पालन करना बहुत जरूरी है, लेकिन गुरुजी ऐसे अन्य आचार्य हैं जो कहते हैं कि शील का पालन करना इतना जरूरी नहीं है, उसके बिना भी हम स्पिरिचुअलिटी के हाइट्स तक पहुंच सकते हैं।
उनको अपनी दुकान चलानी है ना, शील पालन भी नहीं करे, धर्म धारण भी नहीं करे और फिर भी अध्यात्म की ऊंचाइयों पर पहुंच जाए, धोखे की बात है बेटी। ये आज ही नहीं, हम पुराना साहित्य देखते हैं तो भगवान बुद्ध के समय भी ऐसे आचार्य थे जो कहते हैं कि खाओ पियो मौज करो, जो मन में आए सो करो, कोई शील सदाचार से लेन देन नहीं। हमारे पास आओ, ऐसा ध्यान कराएंगे, ऐसा ध्यान कराएंगे कि बस आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। भीड़ लगती थी उनके पास। अरे सामान्य व्यक्ति, उसको मोह शोक की भी छूट मिल जाए, दुराचार की भी छूट मिल जाए और भीतर से आनंद भी मिले तो और क्या चाहिए। ये परंपरा गलत परंपरा चलते 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 इतनी बिगड़ी कि ऐसे आचार्य भी हुए जो कहने लगे यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणं कृत्वा घृतं पीवेत। जब तक जीवो सुख से जीवो, चाहे जैसे हो, झूठ बोल करके कपट करके छल करके या ऋण लेकर के, खाओ तो शक्कर ही पियो तो घी ही। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनर्जन्म न विद्यते। अरे मरने के बाद कौन जन्म लेता है, तो इस जीवन में जो मोक्ष को करना उसको कर दो और देखो हम तुम्हें ऐसा आनंद सिखाएंगे, ध्यान का ऐसा आनंद सिखाएंगे। तो ये सारी बातें तो धर्म को ह्रास करने की बातें हैं, धर्म की ग्लानी करने की बातें हैं, लेकिन फैलती है। जब ये बात आती है सामने कि हम गलत रास्ते जाने में अपनी भी हानि करते हैं, औरों की भी हानि करते हैं, तब देखिएगा, अरे देख वाणी या शरीर से कोई भी दुष्कर्म करता हूं तो भीतर विकार जगाता हूं, और विकार जगाता हूं तो व्याकुल होता हूं, स्वयं भी व्याकुल होता हूं, औरों को भी व्याकुल करता हूं। ये बात अनुभूति से समझ में आने लगी, पुस्तकों की बात नहीं रह गई, गुरु महाराज की वाणी नहीं रह गई, अपनी अनुभूति से बात समझ में आ गई। और जब ये होने लगा तब काम की बात हुई। लेकिन ये होता कैसे, जब तक पहले शील सदाचार में पुष्ट न हो जाए तब तक अंतर्मुखी होके इन गहराइयों में जा ही नहीं सकता। एक उदाहरण से समझे, हमें समुद्र के नीचे पैंदे में धरती के अंदर तेल की खोज करनी है। मानसून आ गया, बड़े तूफान आने लगे, समुद्र पर ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी, तो कैसे इतनी गहराई में जाकर के तेल खोजा जाएगा। काम बंद, मानसून खत्म हो गया, फिर काम शुरू हुआ खोज करने का। अभी भी समुद्र के ऊपर लहरें तो हैं पर छोटी छोटी लहरें हैं, वो एकदम बंद हो जाए ये आवश्यक नहीं, कम से कम बड़ी बड़ी लहरें तो बंद हो। जब जब अपना शील भंग करता है, इन पांचों में से कोई सा भी करे, तब तब ये तूफान उठता है भीतर। तो अपने अंतर मन की गहराइयों तक, जड़ों तक पहुंचेगा ही कैसे, और पहुंचेगा नहीं तो विकारों को निकालेगा कैसे। अपने कर्म संस्कार जो उसे होश ही नहीं है, वो बनते ही जाएंगे, व्याकुलता बढ़ती जाएगी। उन कर्म संस्कारों का बनना रुके और जो इकट्ठे हो गए उनको निकालना आ जाए, तो मुक्ति होती है। मुक्ति काहे की? विकारों से मुक्ति। मन बंधन से मुक्त हो गया, अब गांठे खुल गई, भीतर विकार नहीं रह गए, चित्त नितांत निर्मल हो गया, जड़ों तक निर्मल हो गया। तो ये कर्म संस्कारों को जड़ों से निकालने की बात इस विद्या द्वारा ही आएगी, और ये शील होगा तो ही आएगी। शील सदाचार नहीं है, उन गहराइयों तक हम जा ही नहीं सकते, इसलिए आवश्यक है बेटी, अनिवार्य है।
जी गुरुजी, धन्यवाद, आपने तो बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया। गुरुजी, ये जो कर्म संस्कारों की बात आपने की, इस विषय में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं जो हम आपसे अगले एपिसोड में ही कर पाएंगे, क्योंकि आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है।
बहुत ठीक,
प्रणाम गुरुजी।
सुखी हो बेटी।
प्रणाम माता जी। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का एपिसोड। हमें इसी तरह आपके प्रश्न भेजते रहिए। अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय देखना ना भूलिए ऊर्जा।
हमारा पता है ऊर्जा, जी नेटवर्क, पोस्ट बैग नंबर 1, अंधेरी ईस्ट, मुंबई 99, इंडिया, TVC। ईमेल response@znetwork.com।
नमस्कार दर्शकों, ऊर्जा में आप सभी का स्वागत है। पिछली बार हमने वाणी और शरीर के शील के बारे में बात की, ये जाना कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सत्कर्म और दुष्कर्म, इन दोनों के पहलुओं को भी जाना। लोग अक्सर अपने स्वभाव को अपने पूर्व कर्मों से जोड़ देते हैं और कहते हैं कि उनकी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है वो उनके पूर्व कर्मों के ही वजह से हो रहा है, जिसे वो बदल नहीं सकते। आखिर ये कर्म क्या है और हमारी जिंदगी को इतना इन्फ्लुएंस क्यों करते हैं? आइए यही प्रश्न पूछते हैं हमारे गुरुजी श्री सत्यनारायण गोयनका जी से। प्रणाम गुरुजी।
सुखी हो बेटी।
प्रणाम माताजी। गुरुजी, आपने कर्म संस्कारों की बात की, तो ये क्या है और इनका हम पर क्या प्रभाव होता है?
कर्म के बीज हैं, उन्हीं को कर्म संस्कार कहते हैं। जिस तरह का बीज बोएंगे वैसा फल आएगा। तो हमारा कर्म संस्कार जिस प्रकार का है वैसे हमारे जीवन को प्रभावित करेगा। कर्म संस्कार अच्छा है तो सुखी जीवन जिएंगे, कर्म संस्कार बुरा है तो दुखी जीवन जिएंगे। प्रकृति का जैसा नियम फल और बीज के लिए लागू होता है वैसे ही कर्म संस्कारों पर लागू होता है। ये भी बीज हैं, कर्म के बीज हैं, और एक स्वभाव है प्रकृति का ऐसे कि संवर्धन होते जाता है, खूब बढ़ता है। एक उदाहरण से समझें, वट का वृक्ष, उसका एक बीज उपजाऊ धरती में डाला, अंकुरित होके फूटा और बढ़ते 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 कितना विशाल वृक्ष खड़ा हो गया। नन्ना सा बीज, कितना विशाल वृक्ष। अब उसमें फल आने लगे, हर फल में उसी तरह के बीज हैं और हर बीज में एक एक वटवृक्ष समाया हुआ है। हर मौसम में फल आए जा रहे हैं, बीज आए जा रहे हैं, फल आए जा रहे हैं, बीज आए जा रहे हैं, और ये बड़ा दीर्घायु होता है, हजारों वर्ष चलता है कभी। तो कितने फल आए, एक बीज डाला था कितने फल आए। कितना ही दीर्घायु हो, एक बार ऐसा समय आता है कि जर्जरित हो गया, बूढ़ा हो गया, गिर पड़ा, मर गया। तो हम ये समझें कि वो जो एक बीज बोया था इसके इतने फल आ गए, अब तो बात खत्म हुई। नहीं खत्म हुई, वो पेड़ गिर गया, मर गया, फिर भी बात खत्म नहीं हुई। क्योंकि जो जो बीज आए थे, जो जो फल आए थे, उसमें जो जो बीज आए थे, हर बीज एक वटवृक्ष धारण किए हुए है। तो अंत कहां, ठीक इसी प्रकार अपना कर्म बीज गलत बनाने के बाद ऐसे स्वभाव शिकंजे में जकड़ गए कि उसका बढ़ावा ही हो रहा है, बढ़ावा ही हो रहा है। कितना बढ़ता है, जितना बढ़ता है उतना ही हमारा संसार चक्र बढ़ता है। तो हमारे व्यक्तित्व का निर्माण हमारे कर्म बीज से है, संसार चक्र का निर्माण इस कर्म बीज से है। ये बात समझ में आ जाए तो इससे हम कैसे बचें। वट वृक्ष के बीज आए और हमने उसे चट्टानी धरती पर डाल दिया, वो उगेंगे नहीं। हमने उसको उपजाऊ धरती दी तो उगेंगे। यही नासमझी हम करते रहते हैं कि हमारे जो पुराने कर्म बीज थे फल लेकर आए, जो भी फल लेकर आएंगे उसमें उस तरह का बीज भी होगा। जैसे भय का बीज था और वो फल लेकर आया तो भय की परिस्थिति पैदा होगी और हम नया भय पैदा करेंगे, तो नया बीज पैदा करेंगे। तो इस तरह से भय आएगा हम नया बीज, भय आएगा हमने तो भय भय के बीजों का हमने ढेर लगा लिया। इसी तरह हर प्रकार के विकार का ढेर लगाते जाते हैं और व्याकुल होते जाते हैं। प्रकृति के इस नियम को जब अनुभूति से समझने लगेंगे तब उसके बाहर निकलना आसान हो जाएगा। फल तो लेकर के आया पुराना कर्म, उसके साथ बीज भी आया, लेकिन हम उसमें लोट पलोट नहीं लगाते, हम उसको बढ़ावा नहीं देते, हम उसे उपजाऊ धरती नहीं देते, तो बढ़ेगा नहीं, समाप्त हो जाएगा। तो ये समझने के लिए हमें अंतर्मुखी होकर अपने भीतर इस सारे प्रकृति के नियम को अनुभूति से जानना आवश्यक है।
जी गुरुजी, लेकिन गुरुजी ऐसा भी कहते हैं कि कर्म चाहे जैसा भी हो लेकिन अगर किसी की कृपा हो जाए तो फल जरूर मिलता है, तो क्या गुरुजी ऐसा संभव है?
कृपा हमें अपने आप पर करनी चाहिए, दूसरा कोई क्या कृपा करेगा, जिम्मेदार हम हैं। हम दुष्कर्म पर दुष्कर्म करते चले जाएं और आशा ये रखें कि फल तो हमको ठीक ही मिलेगा भले हम कितने ही दुष्कर्म करें, ये अपने आप को धोखा देने की बात है। प्रकृति के नियम हैं, उनको कोई बदल नहीं सकता और हम ही जिम्मेदार हैं। हमारे कर्मों के हम जिम्मेदार, कर्मों के बीज के हम जिम्मेदार, उसके फल के हम जिम्मेदार। तो अत्ता ही अत्तनो नाथो, खुद ही अपना मालिक है और कोई मालिक नहीं। अत्ता ही अत्तनो नाथो, अत्ता ही अत्तनो गति, अपनी गति खुद बनाता है। सुगति बनाए, दुर्गति बनाए या सारे गतियों के परे मोक्ष अवस्था प्राप्त कर ले, खुद मालिक है। अपनी मलकियत को भूल बैठे तो फिर अपने स्वभाव के गुलाम हो गए तो दुखी दुख आएगा। नियम प्रकृति का ख्याल रखे कि फल वैसा ही पाइए जैसा बोए बीज, वैसे ही फल आएगा, उसमें कोई हेर फेर नहीं हो सकता। ये प्रकृति के नियम को क्यों नहीं पहचानते, उसे महत्व दें तो अपने कर्मों पर पहरा लगाएं कि हम कर्म बिगड़ने नहीं देंगे, अपने खारे बनने नहीं देंगे। हमारा बीज ही नहीं खारा होगा, मीठा ही होगा तो मीठा ही फल आएगा। इतनी सी बात जो आदमी जितनी जल्दी समझ लेता है उसका उतना ही कल्याण हो जाता है।
जी गुरुजी, आपने बीज और फल के आधार पर कर्म संस्कारों की बात समझाई। गुरुजी इस विषय पर आपसे बातचीत जारी रहेगी, दर्शकों जाइएगा मत, लौटते हैं एक ब्रेक के बाद। गुरुजी आपने कहा कि हम जैसा कर्म करेंगे उसका वैसा ही फल भुगतना पड़ेगा।
बिल्कुल,
लेकिन गुरुजी कई उपदेशकों से सुना है कि कुछ कर्मकांड करने से पुराने कर्मों से मुक्ति मिल सकती है, आप इस बारे में क्या कहेंगे?
नहीं बेटी, नहीं, ऐसा होता नहीं, ये अपने आप को धोखा देने की बात है। प्रकृति किसी का लिहाज नहीं करती। कैसा ही कर्मकांड करके हम अपने पूर्व कर्मों को खत्म कर दें, उसके फल ना आने दें, ऐसा होता नहीं, फल आएगा ही। कर्मकांड का धोखा, उससे जितना बचे उतना अच्छा। भगवान बुद्ध के जीवन काल की एक घटना सुनाऊं तुम्हें। एक भाई का पिता मर गया, वो आया भगवान के पास, हाथ जोड़ के कहता है कि मेरे पिता का निधन हो गया, आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप कुछ कीजिए। अरे मैं क्या करूं, आप कुछ कर्मकांड कीजिए, देखिए ये छोटे छोटे पंडे पुजारी पुरोहित जो होते हैं कोई ना कोई कर्मकांड करवाते हैं और वहां स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है। आप कुछ करेंगे तो केवल स्वर्ग का दरवाजा खुलेगा नहीं, उनको परमानेंट स्टे मिल जाएगा, ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। तो आप कुछ कीजिए, आप जैसे महान कारुणिक, आप जैसे महान शक्तिशाली, आप कुछ करेंगे। अरे कुछ नहीं होता भाई, वो नहीं समझे कुछ भी। तो अच्छा जा, दो मट्टी की हंडिया ले आ। बहुत खुश हुआ, अब भगवान मेरे लिए कोई कर्मकांड करेंगे, मेरे पिता के लिए कर्मकांड करेंगे। दो मट्टी की हंडिया ले आया, एक में घी भर ले, भर लिया, दूसरे में कंकर पत्थर भर ले, भर लिया। अब दोनों को सील कर दिया, अच्छी तरह खूब सील कर दिया। ये बगल में तालाब है, इसमें दोनों को छोड़ दे। दोनों अपने वजन से पैंदे में बैठ गए। अब कहा लंबा सा डंडा लेकर आ और मार इनको, तोड़ दे दोनों को। बहुत खुश हुआ, देखा कैसा कर्म कांड कर रहे हैं भगवान। यहां ये हंडिया टूटेगी, वहां दरवाजा खुलेगा स्वर्ग का। मारा जोर से, दोनों हंडिया फट गई, टूट गई। जिसमें घी था वो घी तैरते तैरते ऊपर आ गया और तैरने लगा ऊपर। कंकर पत्थर थे वो नीचे पैंदे में रह गए। तो भगवान कहते हैं देख भाई, इतना काम तो हमने करा दिया, अब बुला अपने और पुरोहितों को पंडितों को बुला करके कोई और कर्मकांड करवा और वो प्रार्थना करें कि ऐ कंकर पत्थर तुम ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। ऐ घी तू नीचे चले जा, नीचे चले जा, हम भी तो देखें ये कैसे होता है। महाराज आप तो हमारा मजाक करने लगे, ये कंकर पत्थर पानी से भारी होते हैं, ये नीचे ही रहेंगे, ये ऊपर आ नहीं सकते, ये प्रकृति का नियम है। और ये घी हल्का होता है पानी से, ये ऊपर ही रहेगा, ये नीचे जाएगा नहीं, प्रकृति का नियम है। अरे तो प्रकृति के नियम को इतना समझता है तो इतनी बात तेरे समझ में नहीं आई कि तेरे बाप ने कंकर पत्थर जैसे भारी भारी काम किए होंगे तो नीचे ही जाएगा रे, कौन उसको ऊपर उठाने वाला है। और उसने बड़े हल्के फुल्के अच्छे काम घी जैसे किए होंगे तो ऊपर ही जाएगा, कौन उसकी टांग खींचने वाला है। कर्म के सिद्धांत को समझ, जो जैसा कर्म करता है वैसा फल मिलता है। कुदरत किसी का पक्ष नहीं करती, कुदरत लेती पक्ष ना और करती नहीं लिहाज। उसको वैसा फल मिले जिसका जैसा काज। नियम है प्रकृति का, वो बदलने वाला नहीं। तो इन कर्म कांडों के जंजाल में पड़कर हम अपने आप को धोखा नहीं दें, अपने कर्मों को सुधारें। कर्म सुधरेंगे तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, जो होगा हमारे लिए अच्छा ही होगा, इस जीवन में भी आगे के जीवन में भी।
जी गुरुजी, ये जो आपने कर्म सिद्धांत की बात की ये तो बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आई। गुरुजी इस विषय में आपसे बातचीत जारी रहेगी, दर्शकों जाइएगा नहीं, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुरुजी हमें दर्शकों से कुछ पत्र मिले हैं। पहला प्रश्न पूछ रहे हैं यनराज गुप्ता जी, आप जब शील की बात करते हैं गुरुजी तो ये बौद्धों के पंचशील की ही बात हुई ना?
क्या करें बेटी, धर्म जब संप्रदाय का रूप ले लेता है तो कोई धारण तो करता नहीं, और शब्दों के साथ चिपकाओ, ये बौद्धों का है, ये जैनियों का है, ये हिंदुओं का है, ये मुसलमानों का है, ये ईसाइयों का है। जैसे ही पंचशील शब्द का इस्तेमाल किया कि तो जो लोग अपने को बौद्ध कहते हैं बड़े खुश होंगे, देखो हमारा धर्म सिखाया जा रहा है। और जहां 10 कमांडमेंट्स की बात कर दी तो क्रिश्चियन कहेगा अरे हमारा ही सिखा रहे हैं, और जहां हमने यम नियम शब्द इस्तेमाल कर लिए तो हिंदू कहेंगे बिल्कुल हमारा ही सिखा रहे हैं। न पंचशील वाला पंचशील पालन करेगा, न 10 कमांडमेंट वाला 10 कमांडमेंट पालन करता है, न यम नियम वाला यम पालन करता है, शब्दों से चिपका हो गया। तो जो शब्द अपनी परंपरा के हैं वो तो महान, और वही शब्द वही अर्थ रखने वाले दूसरी परंपरा के हैं तो गए गुजरे, तो हमारा नहीं है, तो पराया धर्म है, ये तो पराया धर्म है। भूल गए धर्म को। धर्म में कर्म का महत्व तो है, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जैसा कर्म वैसा फल, जैसा कर्म वैसा फल। तो कैसे इस बात को भूल करके हम और केवल शब्दों में ही चिपकाव पैदा कर लें, ये हमारा धर्म ये तुम्हारा धर्म, और धर्म का पालन कोई नहीं करता। मेरा तेरा मेरा तेरा इस संप्रदाय के नाम पर जो शुरू हुआ, बाड़ेबंदी के नाम पर जो शुरू हुआ, उससे हानि हानि हुई। तो पंचशील से घबराए नहीं, ये पांचों शील सबके लिए हैं, बौद्धों की मोनोपोली नहीं है उस पर।
जी गुरुजी शुक्रिया। अगला प्रश्न पूछ रही है मिसेस विद्या जी भोपाल से। आप कर्म कांडों में विश्वास नहीं रखते ऐसा प्रतीत होता है, पर मेरा अनुभव ये रहा है कि तीर्थों की यात्रा करने से मेरी कुछ समस्याएं सचमुच हल हो गई हैं, और शास्त्रों में भी धर्म यात्रा का असीम पुण्य माना गया है, तो क्या ये बात सच्ची नहीं है?
बेटी तुझे से प्रश्न करता हूँ कि तू अकेली तो तीर्थ यात्रा करने गई नहीं, और भी तो लोग गए ना, तो पूछा सबसे कि सबकी मनोकामनाएं पूरी हो गई। अब जिसके नहीं हुई वो कहेगा नहीं, डरेगा, अरे मेरी मनोकामना नहीं पूरी हुई, कोई जानेगा तो इसका मतलब यह है कि मेरे में कुछ खोट है या मुझ पर कोई कृपा नहीं है किसी की। सबकी मनोकामनाएं नहीं पूरी होती, मनोकामना पूरी हुई तेरे अपने कर्म संस्कारों की वजह से, और मान लिया कि तीर्थ की वजह से हुई। अगर तीर्थ की वजह से होती तो सबकी ही क्यों ना होती। नहीं हुई तो कहेंगे इसका कर्म ठीक नहीं है इसलिए नहीं हुई, तो तेरा कर्म अच्छा है इसलिए हुई, उसका कर्म ठीक नहीं इसलिए नहीं हुई। तो प्रधान तो कर्म हुआ ना, ये कर्म कांड कहां से आ गया, ये तीर्थ कहां से आ गया, क्यों आया तीर्थ? हर बात बड़े शुद्ध रूप से चली, बिगड़ते बिगड़ते क्या रूप हो गया? तीर्थ कहते हैं तीर पर जो स्थित हो गया। क्या स्थित हो गया? कि अब उसको अगले पार जाना है तो पहले अपने पांव जमाए इस तीर्थ पर। तो क्या स्थान होते थे भारत में ऐसे जिनको तीर्थ कहते थे? वो तपोभूमियां होती थी, वहां अनेक लोग तपस्वी तपे हैं, तो वहां की वाइब्रेशन, वहां का एटमोस्फियर इतना धर्ममय कि वहां जाकर तपें, वहां जाकर साधना करें तो अपने आप उस पार पहुंच जाएंगे। उस पार पहुंचने के लिए तीर्थ होता था, वो तो करे नहीं और गए वहां पर, तीर्थ पर दर्शन करके आ गए और कहा कि हमारा तो मनोकामना पूरी हो जाएगी। धोखे में नहीं जाना चाहिए, प्रकृति के नियमों को जितनी जल्दी जितनी अच्छी प्रकार कोई समझ लेता है वो सचमुच धार्मिक बन जाता है।
जी गुरुजी शुक्रिया। गुरुजी अगला प्रश्न है मिसेज सुधा पूछ रही हैं न्यू दिल्ली से कि दंपति में किसी का किसी दूसरे के साथ विवाहितर संबंध हो और इसमें दोनों की सहमति भी हो तो इसमें क्या बुराई है?
बुराई ही बुराई है, अच्छा ही क्या है इसमें? तो काहे विवाह करे, बिना विवाह के रहे ना कोई किसे संबंध करता फिरे। विवाह की प्रथा क्यों चली कि पशुओं का सजीवन नहीं हो? एक पुरुष एक नारी विवाह के बंधन में बनते हैं तो अपनी वासना के गुलाम नहीं होते, धीरे धीरे संयमित रूप से वासना का प्रयोग होता है, और धीरे धीरे अगर अच्छी साधना करने वाले हैं तो संयमित होते होते कम होते होते उसे निकल जाते हैं, अन्यथा ये तो ऐसी तृष्णा है जिसका अंत नहीं। वासना जागी इस व्यक्ति पर, जागी व्याकुल हुए उस व्यक्ति पर, जागी व्याकुल, व्याकुलता ही व्याकुलता ऐसी अग्नि है, उसमें घी डालते जाएंगे छुटकारा नहीं होगा। तो इस तरह की चिंतन कि हम चाहे जहां अपना शरीर का संबंध करें, क्योंकि हमारा पति भी राजी है हमारी पत्नी भी राजी है, तो दोनों के दोनों डाइवोर्स करके नया विवाह क्यों ना कर ले जिसके साथ संबंध करते हैं, बिगड़ी हुई बात, समाज की व्यवस्था को परिवार की व्यवस्था को बिगाड़ने की बातें हैं, उससे बचना चाहिए। संयम के लिए ही गृहस्थ जीवन होता है, तो गृहस्थ जीवन को दूषित ना होने दे।
धन्यवाद। तो दर्शकों ये थे आपके प्रश्नों के उत्तर, गुरुजी से हमारी बातचीत जारी रहेगी, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। गुरुजी हमारा जीवन पुराने कर्मों के अनुसार चल रहा है तो हम तो बड़े बेबस हैं, हम क्या कर सकते हैं?
क्यों नहीं कर सकते, जब कहा कि अत्ता ही अत्तनो नाथो, हम अपने मालिक हैं, अत्ता ही अत्तनो गति, हम अपनी गति बनाते हैं। तो कैसे गति बनाते हैं ये बात समझ में आ जाए तो दुर्गति की ओर जाने वाले जीवन को हम सदगति की ओर बदल सकते हैं। पुराने कर्म अपना फल लेकर आएंगे, उसमें कोई फेर बदल नहीं कर सकता आए, लेकिन नए कर्म बनाने का तो हमारे हाथ में अधिकार है, हम नए कर्म बनाने के मालिक हैं। पुराने कर्मों का चाहे जैसा फल आए, हम नया कर्म कोई भी दूषित कर्म नहीं बनाएंगे। तो अपना भविष्य सुधरने लगा। वर्तमान पुराने कर्मों की संतति है, उसकी संतान है। भविष्य वर्तमान की संतान है, तो हमें वर्तमान पर अपने मलकियत जमानी चाहिए, फिर हमें भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई पुराना कर्म अपना फल लेकर आएगा और उसके साथ बीज आएगा उसका, हम उस बीज को अच्छी उपजाऊ धरती देते चले जाएं, उसको सींचते चले जाएं, उसको फर्टिलाइजर, तो बढ़ेगा ही, वो कैसे रुकेगा। हम नहीं देते, पुराना फल आया सो आया, अब नया हम कर्म वैसा बनने नहीं देंगे। नया नहीं बनने देंगे तो पुराने एक 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 करके खत्म होते चले जाएंगे। तो खीणंग पुराणंग नवंग नत्य संभवंग, नया बनाना बंद कर दे, नहीं बनाए तो पुराना अपने आप क्षीण होते 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 समाप्त हो जाएगा। इस माने में हम अपने मालिक हैं, कितना ही पहले दुष्कर्म क्यों न किया हो, आज हम अपना कर्म सुधार सकते हैं। अगर हमने आज पर अपनी मलकियत कर ली, आज के कर्म पर संवर कर लिया, मानस पर कंट्रोल कर लिया, तो अपने आप पुराने कर्म धुलते चले जाएंगे। संवर कर नव कर्म पर, पुरानों पर कुछ नहीं कर सकते, वो तो कर चुके। अब जो नया करना है, पुराने के फल के साथ जो बीज आया, तो संवर कर नव कर्म पर, पूर्व कर्म धुल जाए, पुराने अपने आप धुलते चले जाएंगे। हमने नए पर रोक लगा दी। दुख बंधन से मुक्ति का केवल यही उपाय। कैसे बंधन से मुक्त हो, नए गांठे बंधे नहीं देंगे, पुरानी खुलती चली जाएगी, तो अपने आप बंधन से मुक्त हो गए। तो अपने हाथ में है बेटी, हम अपनी इतनी बड़ी शक्ति को भूले बैठे हैं, इसलिए दुखी होते हैं। अपने भीतर की ऊर्जा जगा करके, अपनी शक्ति प्राप्त करके, हम सारे दुखों के बाहर निकल सकते हैं।
जी गुरु जी, ये कर्म का सिद्धांत तो बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया। और ये भी जाना कि हर एक व्यक्ति की एक अपनी चॉइस होती है, अपने भीतर एक ऊर्जा होती है जिसका उपयोग करके वो अपने जीवन को और भी अच्छा बना सकता है। प्रणाम गुरु जी।
सुखी हो बेटी।
प्रणाम माता जी। तो दर्शकों, आज का ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय देखना ना भूलिए ऊर्जा। और हाँ, अपने प्रश्न जरूर भेजिए। नमस्कार।
हमारा पता है ऊर्जा, जी नेटवर्क, पोस्ट बैग नंबर 1, अंधेरी ईस्ट, मुंबई 99, इंडिया, TVC। ईमेल response@zeenetwork.com।
नमस्कार, ऊर्जा में आप सबका स्वागत है। दर्शकों, पिछली बार हमने जाना कि कर्म सिद्धांत क्या होता है, ये भी जाना कि हम अपने कर्मों का जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल पाएंगे। आज दर्शकों, हम जानेंगे कि मनुष्य में बीज बोने की जो प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है। तो आइए इसी विषय में कुछ और प्रश्न पूछते हैं हमारे गुरु जी श्री गोयंका जी से। प्रणाम गुरुजी।
सुखी हो बेटी।
प्रणाम माता जी। गुरुजी, पिछली बार आपने कर्म सिद्धांतों को बीज और फल के आधार पर हमें समझाया, तो गुरुजी आज हमें ये बताइए कि ऐसा कौन सा कर्म बीज बनेगा जिसके आधार पर हमें फल भुगतने पड़ेंगे।
बेटी, वैसे तो हमें सारे कर्म सुधारने चाहिए, काय का कर्म भी सुधारें, वाणी का कर्म भी सुधारें, पर मुख्य बात तो मन के कर्म की है। ये तीनों सुधरें तब धर्म का सार आया। तो कायिक कर्म सुधार ले, वाचिक कर्म सुधार, मन के कर्म सुधार ले, यही धर्म का सार। जो कर्म बनता है वो मन में बनता है, और उसके बाद वो बढ़ते 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 वाणी पर प्रकट होता है, तो वाणी का कर्म हो गया। और बढ़ते 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 शरीर पर उतरता है, तो शरीर का कर्म हो गया। जो उद्गम है, जो उत्पत्ति है, जो आरंभ है, वो मन से है। जैसे समझे कि किसी व्यक्ति से मेरे संबंध बिगड़े हुए हैं, उसे देखते ही मन ने काम करना शुरू किया, क्रोध आया, द्वेष आया, दुर्भावना आई, बहुत तेज हुई वो, तो रहा नहीं गया, तो वाणी से दो चार गालियां निकाल दी। दुष्कर्म मन का था, वाणी पर प्रकट हो गया, और तेज हुआ और तेज हुआ, उसे दो चार चांटे लगा दिए, इस शरीर का दुष्कर्म हुआ। जैसे दुष्कर्म वैसे सत्कर्म भी। कोई बहुत दुखियारा व्यक्ति है, उसे देखते ही मन ने काम करना शुरू किया, बहुत करुणा जागी, वो मन का सत्कर्म। जो करुणा जागी, जो प्यार जागा, वो तेज हुआ तेज हुआ तेज हुआ, वाणी पर उतर आया, तो सांत्वना के दो शब्द कह दिए, प्यार के दो शब्द कह दिए, वाणी का सत्कर्म हो गया। और तेज हुआ और तेज हुआ, शरीर पर उतर आया, तो अपने पास कुछ था तो उसे दे दिया, उसकी सहायता कर दी, तो शरीर का सत्कर्म हो गया। तो प्रमुख तो मन का ही कर्म है। मन के कर्म सुधार ले, मन ही प्रमुख प्रधान, कायिक वाचिक कर्म तो मन की ही संतान। जैसा मन है उसी की संतान। मन का कर्म जैसा है वैसा ही वाणी का होगा, वैसे ही शरीर का होगा। और उदाहरण से समझे, एक बहुत धनी व्यक्ति अपने साथ धन दौलत लिए हुए जंगल में यात्रा कर रहा है, सामने से कोई डाकू आया, उसने पहचान लिया ये आदमी बहुत धनी है और इसके पास बहुत धन है, उसके मन में लोभ जागा, वो उससे मांगता है, ये अपना धन कैसे दे दे, नहीं देता, तो उसे क्रोध आता है, तो क्रोध आता है तो अपनी छुरी निकाल के उसके पेट में भोंक देता है, परिणाम यह होता है कि वो व्यक्ति मर गया। एक घटना घटी। ऐसी एक और घटना, किसी आदमी के पेट में अल्सर हो गया, बीमार है, बहुत व्याकुल है, डॉक्टर के पास गया, उसने देखा भाला, कहा भाई अगर ऑपरेशन करें तो शायद ठीक हो जाओ तुम। ऑपरेशन थिएटर में ले गए, ऑपरेशन टेबल पर लेटाया, डॉक्टर ने अपना चाकू निकाला, उसके पेट को काटा, और संयोग ऐसा हुआ वो मर गया। डाकू ने भी वही काम किया कि उसके छुरी से ये धनवान व्यक्ति की मृत्यु हो गई, डॉक्टर ने भी वही काम किया कि उसकी छुरी से इस रोगी की मृत्यु हो गई। तो ये प्रकृति, ये निसर्ग, ये कुदरत, या यूं कहो ये परमात्मा, दोनों को एक ही दंड देगा, असंभव है। चित्त की चेतना क्या, उस डाकू की चित्त की चेतना लोभ से भरी हुई और फिर क्रोध से भरी हुई, और यहां ये डॉक्टर के चित्त की चेतना प्यार से भरी हुई, करुणा से भरी हुई, इस चेतना से काम करता है। तो प्रकृति उसे जो फल देगी वो उसके चित्त की चेतना के अनुसार देगी, शरीर के कर्म के अनुसार नहीं। जैसे चित्त की चेतना फल वैसा ही होए, दुर्मन का फल दुखद ही और सुखद सुमन का होए। मन दुर्मन हुआ तो दुखी आएगा, मन सुमन हुआ तो सुखी आएगा। उन्हें बताए नियम है प्रकृति के, जैसा मन की चेतना है ठीक उसी प्रकार फल आएगा।
गुरु जी बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने। हम अक्सर अपने मन के कर्मों पर कम ध्यान देते हैं। गुरु जी आपसे बातचीत जारी रहेगी, हम लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। गुरु जी आपने जो मन के कर्मों की बात की, उसके अनुसार हम जो मन में सोचते हैं वही बीज हुआ ना, तो फिर हमें शरीर और वाणी पर नहीं बल्कि अपने मन के कर्मों पर ही ध्यान रखना चाहिए।
बिल्कुल ठीक। अगर हमने मन के कर्मों पर पहरा लगा दिया तो वाणी के कर्म अपने आप ठीक होंगे, शरीर के कर्म अपने आप ठीक होंगे। पहरा मन पर लगाना है। और मन में भी ये देखते रहना है कि मन में जो कुछ जागा वो चेतना कैसी उसकी, जैसे चित्त की चेतना वैसा ही कर्म। तो चेतना हं कम्मं वदामि भिक्खवे, जो चित्त की चेतना है उसी को मैं कर्म कहता हूं, अपने अनुभव की बात कहता है। और अनुभव ऐसा जो हर व्यक्ति अपनी अनुभूति पर उतार सके, बुद्ध ने कह दिया इसलिए मानना होगा ये ठीक नहीं, बुद्ध ने कह दिया उसे स्वयं भी जानना होगा और जान करके मानना होगा। मनो पुबंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया, सारे धर्म कर्म पहले मन में जागते हैं, और फिर क्योंकि मन में जागते हैं इसलिए मन ही प्रमुख है, मन ही प्रधान है, मन ही श्रेष्ठ है। और जो परिणाम आ रहे हैं हमारे जीवन में, जो कुछ हो रहा है वो सारा मनोमय मनोमय मन का ही परिणाम है। तो मनोपुबंगमा धम्मा, क्योंकि पहले आरंभ हुआ मनो सेठा मनोमया, मनसा चे पदुठे न भासति वा करोति वा। मन प्रदुष्ट हो जाए, प्रदुष्ट हो जाए माने मैला हो जाए, उसमें द्वेष जागे, दुर्भावना जागे, मैल ही जागे किसी तरह का, और उस मैल के आधार पर मनसा चे पदुठे न भासति, कुछ बोलता है, करोति वा, शरीर से कुछ करता है, तो क्या होता है उसका, ततो नंग दुख मन वेति चक्कंग वे बहतो पदंग। उसके पीछे दुख ऐसे लग जाता है, ऐसे लग जाता है जैसे बैलगाड़ी पर जुते हुए बैल के पीछे उस बैलगाड़ी का चक्का लग गया। अब वो बैल कहीं भागे उसके पीछे चक्का है, कहीं भागे, इस स्थान पर जाए कि उस स्थान पर जाए, इस देश में जाए कि उस देश में जाए, इस लोक में जाए कि उस लोक में जाए, दुख पीछे लगा हुआ है। ठीक इसी प्रकार मनसा चे पसन्ने ने भासति वा करोति वा। मन प्रसन्न है, पुरानी भाषा है, उन दिनों प्रसन्न कहते थे निर्मलता को, चित्त निर्मल है, उसे मैल नहीं है, मैल नहीं है तो मैत्री है, करुणा है। ऐसे प्रसन्न चित्त से, निर्मल चित्त से जब कुछ भासति बोलता है, करोति शरीर से कुछ कर्म करता है, तो ततो नंग सुख मन वेति छाया वे अनुपायनी। उसके पीछे सुख लग गया, ऐसे लग गया जैसे हमारी छाया हमारे पीछे लग गई। तो जैसे बुरे चित्त का, मैले चित्त का दुख पीछे लग जाता है, ऐसे निर्मल चित्त का सुख हमारे पीछे लग जाता है। इसलिए हमको मन के कर्मों की तरफ जाना चाहिए, देखना चाहिए मन में कैसी चेतना जाग रही है, निर्मल चित्त की चेतना जाग रही है कि मैले चित्त की चेतना जाग रही है, उसके प्रति सजग रहें, और जो बुरी है उसे निकालें, जो अच्छी है उसे सुधार, उसे रखें।
गुरुजी ये तो बड़ी अच्छी बात कही आपने, लेकिन गुरुजी हम ये कैसे सोचे, कैसे समझे कि हमारे भीतर ठीक वैसा ही हो रहा है?
देखो बेटी, इसीलिए ये विद्या खोज निकाली गई कि भीतर क्या हो रहा है। अधिकतर बाहर जो कुछ होता है उसी को महत्व देते हैं। बाहर कोई घटना घटी और तुरंत हमारा मन चलायमान हो गया, उसने प्रतिक्रिया करनी शुरू की, तो जब चलायमान हुआ तो किस ओर झुका? पुरानी भाषा है नति मन झुकाओ। मन जब चलायमान हुआ बाहर की किसी घटना को देखकर, व्यक्ति को देखकर, स्थिति को देख करके, तब उसका झुकाव किस तरफ हुआ? तो नति अगर गलत हुई है तो अवनति ही अवनति होगी, यह नति ठीक हुई है तो उन्नति ही उन्नति होगी, और अवनति होगी तो दुर्गति होगी, उन्नति होगी तो सदगति होगी। जो यथार्थ है, यथाभूत है, इस क्षण क्या हुआ, बाहर घटना जो भी घटी, मेरे भीतर क्या हुआ, मेरे भीतर जो झुका हुआ मन का वो दुर्गति की ओर हुआ, क्योंकि मैंने क्रोध जगाया, द्वेष जगाया, दुर्भावना जगाई, और कठिनाई ये हो गई कि बार बार ऐसा होता है और बार बार वही नति होती है, बार बार ऐसे होता है, बार बार वैसे झुकाव होता है, तो एक स्वभाव बनता चला गया, और फिर तो हम स्वभाव के गुलाम हो गए। इसी को हम बदलें उन्नति की ओर। अनचाही बात हुई तो भी अपने मन में हम कभी भी अवनति का संस्कार नहीं बनाएंगे, उन्नति का संस्कार बनाएंगे, बेचारे का भला हो, इसका मंगल हो, इसका कल्याण हो, तो बात बदल गई। तो अब हमारा जो झुकाव है वो उन्नति की ओर है, कल्याण की ओर है, क्योंकि मन में मंगल भावना जागती है, मन में क्रोध नहीं जागता। अगर हमने ऐसा स्वभाव बना लिया जो चित्त को मैला करने का ही है, तो इद तपति पिच तपति पापकारी उभयत्थ तपति, जो इस तरह का काम करता है यहां भी संतापित होता है, वहां भी संतापित होता है, सारे जीवन संतापित संतापित संतापित, और मरने के बाद भी संतापित, क्योंकि वो उस धारा में पड़ गया। और ठीक इसी प्रकार मन को निर्मल करके उस ओर झुकाता है अपने मन को, तो इधनंदति पिच्छनंदति कत पुण्यो उभयत्थ नंदति, यहां भी आनंदित है और आगे भी आनंदित है, आनंदित है, आनंदित है, मृत्यु के बाद भी आनंदित है। हम अपनी धारा बनाते हैं, सुख की बनाए दुख की बनाए, और ये धारा आरंभ होती है हमारे चित्त की चेतना से। इतनी बात समझ में आ जाए और इतनी बात अनुभूति पर उतरने शुरू हो जाए, मुक्ति का रास्ता मिल गया।
जी गुरु जी, अब हमें आपकी बात बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आई कि हमें अपना पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे मन के विचारों का झुकाव किस ओर है।
बिल्कुल,
उसी से हम अपने मन को सत्कर्मों की ओर ले जा पाएंगे।
बिल्कुल।
तो दर्शकों, आप भी इसी बात पर जरा सोचिएगा। हम लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। गुरुजी, हमें दर्शकों से इतने ज्यादा प्रश्न प्राप्त हुए हैं कि इस एपिसोड का बाकी समय लगता है इन प्रश्नों के उत्तर में ही जाएगा।
बहुत अच्छा।
प्रश्न पूछ रहे हैं योगेश पांडे जी गोरखपुर से। आपने कहा कि कर्म का फल तुरंत मिलता है, पर अक्सर ये कहा जाता है कि कई कर्म विपाक कितने ही जन्मों के बाद उभर आते हैं, लेकिन गुरु जी ऐसा क्यों होता है कि जब वो कर्म फल उभर आए तब हमें पता क्यों नहीं होता कि हमने ऐसे कौन से कर्म किए थे जिसके कारण ये कर्म फल उभरे हैं?
पहली बात तो ये कि कर्म का फल अब भी मिलता है और कर्म का फल कई जन्मों के बाद भी मिलता है, दोनों सही है। जैसे हम दुष्कर्म करते हैं, चित्त को मैला करते हैं, तो जैसे जैसे हमने ऐसा बीज बोया दुष्कर्म का, वो हमें व्याकुल बना रहा है, क्योंकि हमने मैले चित्त का बोया तो उसका फल भी बीज के साथ आ रहा है, हम व्याकुल हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। लेकिन हमने ऐसा स्वभाव बनाया कि जो पत्थर की लकीर की तरह बनता चला गया, बहुत गहरा, बहुत गहरा। अब उसका हो सकता है कि अगले जन्म में आए, हो सकता है और बाद में आए, तो कितना गहरा हमने संस्कार बनाया, उसका फल आने में देरी भी लग सकती है। प्रकृति में हम दिन रात देखते हैं, कोई फसल उगाए 3 महीने फसल तैयार हो गई, कोई बीज हमने बोया पेड़ खड़ा हुआ 100 वर्ष के बाद फल देना शुरू किया, ऐसे पेड़ भी होते हैं। तो ये प्रकृति का अपना नियम, प्रकृति देखती है कि इसका फल कब पके, जब पकेगा तब मिलेगा। हम बीज डाले ही क्यों, फिर चिंता मिट जाएगी हमको कि अब फल आया कि बाद में फल आया। और ये नहीं मालूम हो सकता कि हमको जो फल आया है वो अमुक बीज का आया है, हमको उसे लेन देन भी नहीं। हमारा कपड़ा मैला है और हमारे पास साबुन है, हमारा काम है कि हम उस कपड़े का मैल उतार दें साबुन को इस्तेमाल करके। हम ये नहीं देखते कि ये मैल कब लगा था, कैसे लगा था, कहां से लगा था। मैल है ना और साबुन है, बस दूर करो उसको, तो उस जंजाल में नहीं पड़ना चाहिए कि ये कौन से कर्म का फल आया, हमको उससे लेन देन नहीं। फल आया है और हम उसको दूर कर सकते हैं, इस माने में कि उसको बढ़ने नहीं देंगे।
जी गुरुजी। गुरुजी, अगला प्रश्न है, पंजाब से आया है, पूछ रहे हैं पुनीत शर्मा जी। मैं सारे शीलों का पालन कर लेता हूं, लेकिन एक शील ऐसा है कि परिस्थितियों वश झूठ बोल जाता हूं, तो मैं क्या करूं?
मन को मजबूत करो, क्योंकि ये इतना आवश्यक शील है, जरा फिसले कि फिसलते ही चले जाएंगे, फिसलते ही चले जाएंगे, और बार बार झूठ बोलेंगे और बार बार कहेंगे ऐसी परिस्थिति में, और क्या करता, झूठ बोलना ही पड़ा मुझे, इस परिस्थिति में बोलना ही पड़ा मुझे। और जहां झूठ की बात बढ़ती चली गई, वहां और शील भी तोड़ते चले जाओगे। इसलिए मन को मजबूत करके इस शील को पक्का करो, बहुत कल्याण होगा।
धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी, अगला प्रश्न है, धर्म ग्रंथों के अनुसार धर्म संस्थापन के लिए केवल परित्राणाय साधु नाम न होकर विनाशाय च दुष्कृताम भी आवश्यक है, इस पर आप क्या कहेंगे?
सचमुच आवश्यक है, दोनों ही आवश्यक है। जब धर्म अपने शुद्ध रूप में जागता है तो क्या करता है कि जो सज्जन है, भले लोग हैं, वो और भले बनते चले जाते हैं, कहीं भूल चूक के गलतियां भी होती थी तो उससे निकल जाते हैं। तो ये जो उनके चित्त की निर्मलता और अधिक बढ़ती है, उनके सत्कर्म और अधिक बढ़ते हैं, तो उनका परित्राण होने लगा, माने गलत काम नहीं करेंगे, बच गए अपने आप। और जो बुरा काम करने वाले हैं उनको भी अगर धर्म मिल जाए, अपने अंदर क्या जगाया हमने, ओ इस जगाने से तो मैं व्याकुल हुआ, तो व्याकुल कोई अपने आप को करना नहीं चाहता। तो जैसे जैसे वो धर्म को समझता चला जाएगा और धर्म को जान करके अपने को विकारों से मुक्त करता चला जाएगा, वैसे वैसे दुष्कृत नहीं करेगा। दुष्कर्म करने वालों को मार देने से उसका दुष्कर्म दूर नहीं हुआ, फिर जन्म लेके वैसे ही कर्म करेगा, स्वभाव तो उसका वही बना रहा। तो धर्म मिल जाए तो उसका दुष्कर्म करने का स्वभाव छूट जाए, तो नाश हो गया उसके दुष्कर्म का, नाश हो गया।
जी गुरुजी, दर्शकों जाइएगा नहीं, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुरुजी अगला प्रश्न पूछ रही है सीमा जी कैलकटा से। वो पूछती है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो स्वभाव से ही पापी है और सुधरे ही नहीं, तो उसे तो दंड देना ही होगा ना।
ये कैसे मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति सुधरेगा ही नहीं? अगर उसे ये समझ में आ जाए कि मैं जब पाप कर्म करता हूं या करती हूं तो देखो कितना अपने आप को दुखी बनाती हूं, ये समझ में आने लगे, सुधारना शुरू हो जाए। सुधारने का प्रयत्न ही नहीं हो तो क्या किया जाए? और ऐसा नहीं होता कि एक व्यक्ति हमेशा पाप ही पाप करेगा, पाप भी करता होगा, पुण्य भी करता होगा, दुष्कर्म करता होगा, सत्कर्म करता होगा। संत ईसा मसीह के जीवन की एक घटना, एक महिला पर यह आरोप लगा कि यह दुराचारिणी है, उसने दुराचार किया। अब उन दिनों की प्रथा के अनुसार इसको पत्थरों से मार मार के मार दो, लोग इकट्ठे हो गए उसे पत्थर मार रहे हैं। अब ये तो करुणा का पुत्र है, मैत्री का पुत्र है, करुणा जागीर, ये क्या कर रहे हैं? तो कहा रुको भाई, मुझे एक बात तो बताओ कि जो इसे मार रहे हो दुराचार की वजह से, तुम लोगों में से वही मारे जिसने कभी दुराचार नहीं किया हो? एक बार भी दुराचार किया तो तुम मारने के अधिकारी नहीं हो। वही आप दुराचार तो सबने किया है, कम किया है कि ज्यादा किया है। तो आदमी पहले अपने आप को सुधारे तब दूसरे को सुधारने का प्रयत्न करे। जो अपने को ही नहीं सुधार सका वो दूसरे को क्या सुधारेगा? और मार देने से किसी समस्या का समाधान नहीं हुआ, सुधार देने से हुआ।
जी गुरुजी। गुरुजी अगला प्रश्न पूछ रहे हैं किशोर जी रायपुर से। एक प्रचलित मान्यता ऐसी भी है कि ये सारा संसार ईश्वर का बनाया हुआ है, हमें भी वही जीवन देता है। गुरुजी अगर ऐसा ही है तो ये मन भी तो उसी का बनाया हुआ है और जैसा वो चाहेगा वैसा ही होना है, तो ये सारी एक्सरसाइज क्यों करे?
ये अपने आप को धोखा देने की बात है। अगर सचमुच ईश्वर ने बनाया है तो ईश्वर ने ये नियम भी तो बनाए हैं कि तुम दुष्कर्म करोगे, अपने मन को मैला करोगे, तुम्हें दंड मिलेगा। सत्कर्म करोगे, अपने मन को निर्मल करोगे तो तुम्हें पुरस्कार मिलेगा। अगर ईश्वर का बनाया हुआ है तो ये नियम भी तो ईश्वर का बनाया हुआ है, तो अगर उसे खुश करना है तो उसके नियम के मुताबिक जीवन ढालें। ये तो अपने आप को धोखा देने के लिए, दुष्कर्मों से बाहर निकल नहीं सकते तो एक आंसर ये दे दिया कि हम क्या करें, ईश्वर की मर्जी, वो करे सो हो, उसने किया तो इसलिए हम कर रहे हैं। बुरा काम किए भी जाएंगे और सारा दोष उस ईश्वर पर थोपते चले जाएंगे। बचो, अपने आप को बचाओ, तुम जिम्मेदार हो अपने दुष्कर्मों के और तुम ही दुष्कर्मों के बाहर निकल सकते हो, कोई दूसरा निकालने वाला नहीं।
गुरुजी सच कहा आपने, अपने कर्मों की जिम्मेदारी खुद पर ना आए इसलिए हम किसी अन्य को कारण बताकर उससे बच निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुदरत का कानून ही है कि हम बच नहीं सकते।
बिल्कुल।
गुरुजी एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। प्रणाम गुरुजी।
सुखी हो।
प्रणाम माताजी। तो दर्शकों आप इसी तरह हमें प्रोत्साहन देते रहें अपने खत भेजकर। अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय मिलते हैं ऊर्जा में। नमस्कार।
हमारा पता है ऊर्जा, जी नेटवर्क, पोस्ट बैग नंबर 1, अंधेरी ईस्ट, मुंबई 99, इंडिया, TVC। ईमेल response@znetwork.com।